आज हम जिस दुनिया में उतरने वाले हैं वो कोई रोशनी या उम्मीद की दुनिया नहीं है। वो एक ऐसी दुनिया है जहां हवा में भी शक घुला हुआ है, जहां दोस्ती सबसे बड़ा खतरा बन सकती है और जहां डर आपकी परछाई नहीं बल्कि आपके दिल के अंदर बसने वाला एक जानवर बन जाता है। हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता हर्टा म्यूलर के उपन्यास द लैंड ऑफ ग्रीन प्लम्स की।
और आपने जो कहा दिल के अंदर बसने वाला जानवर, वो इस उपन्यास की आत्मा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका जो मूल जर्मन शीर्षक है वो हर्ट्सटियर है।
अच्छा, हर्ट्सटियर।
हाँ, हर्ट्सटियर। अगर इसका सीधा अनुवाद करें तो मतलब होगा दिल का जानवर। ये कोई बाहरी डर नहीं है जैसे किसी पुलिस वाले या जासूस का डर। ये वो डर है जो आपके अंदर घर कर लेता है, आपकी रगों में दौड़ने लगता है और धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देता है।
ये तो शुरुआत ही बहुत दमदार है। तो चलिए इस दिल के जानवर को और समझते हैं। हर्टा म्यूलर का अपना जीवन भी तो इसी डर के साए में गुजरा है ना। वो रोमानिया के जर्मन अल्पसंख्यक समुदाय से थीं।
बिल्कुल, उन्होंने निकोलाय चौसेस्कू की क्रूर तानाशाही को बहुत करीब से देखा था।
तो क्या ये उपन्यास उनकी अपने अनुभवों का एक आईना है?
बिल्कुल, इसे हम आत्मकथा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके अनुभवों की गूंज वो हर पन्ने पर सुनाई देती है। उस दौर का रोमानिया, आप समझिए, एक खुला जेलखाना था। सरकार की गुप्त पुलिस, जिसे सिक्यूरिटेट कहते थे, उसकी नजर हर जगह थी।
मतलब कौन आपका दोस्त है, कौन मुखबिर, ये जानना नामुमकिन था।
हाँ, बिल्कुल नामुमकिन। तो म्यूलर सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं सुना रही, वो उस दौर के मनोवैज्ञानिक आतंक का एक नक्शा तैयार कर रही हैं। वो हमसे पूछती हैं कि जब भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए तो इंसानियत को कैसे जिंदा रखा जाए।
और इसी मुश्किल सवाल के साथ कहानी शुरू होती है। हमें एक महिला कथावाचक मिलती है जिसका कोई नाम नहीं है। वो एक छोटे दमनकारी गांव से निकलकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए शहर आती है, शायद आजादी की उम्मीद में। लेकिन उसे वहां क्या मिलता है?
उसे एक छोटे पिंजरे से निकलकर एक बड़ा पिंजरा मिलता है।
पूजा,
शहर की आजादी बस एक धोखा है। यूनिवर्सिटी का हॉस्टल जहां उसे रहना है वो घुटन और शक का एक छोटा सा मॉडल है। दीवारों की भी कान है, हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक सवाल है, हर खामोशी के पीछे एक डर। माहौल इतना जहरीला है कि आप किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकते।
ऐसे जहरीले माहौल में तो इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। क्या इस घुटन के बीच कोई, मतलब, ताजी हवा का झोंका आता है, कोई रिश्ता पनपता है?
हाँ, और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत और शायद सबसे दुखद बात है। इसी घुटन के बीच दोस्ती का एक छोटा सा दिया जलता है। कथावाचक की दोस्ती होती है तीन लड़कों से, एडगर, कर्ट और जॉग।
एडगर, कर्ट और जॉग।
हाँ, ये चारों समाज के हाशिए पर हैं। उन्हें सरकारी विचारधारा, वो खोखले नारे, ये सब बेमानी लगते हैं, तो वे अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं।
कैसी दुनिया?
साहित्य और कविताओं की दुनिया। जब पूरा देश सरकार के गुणगान कर रहा है तब ये चारों दोस्त प्रतिबंधित लेखकों को पढ़ते हैं, अपनी कविताएं एक दूसरे को सुनाते हैं। उनकी दोस्ती झूठ के इस महासागर में, आप कह सकती हैं, सच का, इंसानियत का एक छोटा सा द्वीप बन जाती है।
ये उनका मौन विद्रोह है।
बिल्कुल, वो बंदूक नहीं उठाते, नारे नहीं लगाते, बस सच को शब्दों में जिंदा रखने की कोशिश करते हैं।
लेकिन तानाशाही में सच को जिंदा रखना ही शायद सबसे बड़ा जुर्म होता है, तो जाहिर है सरकार की नजर उन पर जरूर पड़ी होगी।
हाँ बिल्कुल, और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। उनकी एक दोस्त थी लोला, वो अपनी अलमारी में लटकी हुई पाई जाती है।
ओह, आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या कहा जाता होगा।
हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या ये वाकई आत्महत्या थी? यही सवाल उन दोस्तों के मन में भी उठता है और यहीं से उन पर शिकंजा कसना शुरू होता है। लोला की मौत के बाद उसकी एक डायरी मिलती है और वो डायरी, वो कोई मामूली डायरी नहीं है, वो डर का एक जीता जागता दस्तावेज है।
उसमें क्या लिखा था?
उसमें लिखा था कि कैसे उसे महसूस होता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कैसे उसे लगता था कि उस पर 2400 घंटे नजर रखे जा रहे हैं।
तो ये डायरी इस बात का सबूत बन जाती है कि उनका डर सिर्फ उनका वहम नहीं था।
सही कहा आपने, वो एक कड़वी हकीकत थी। लोला की मौत सिर्फ एक दोस्त की मौत नहीं है, ये वो पल है जब शासन इन चारों दोस्तों पर विद्रोही का ठप्पा लगा देता है। अब तक वो सिर्फ शक के दायरे में थे, लेकिन अब वे आधिकारिक रूप से राज्य के दुश्मन बन चुके हैं।
और अब वो दिल का जानवर यानी हर्ट्सटियर।
हाँ, जो अब तक शायद सिर्फ गुर्रा रहा था, अब पूरी तरह से जाग जाता है और उनके वजूद पर हमला कर देता है। डर अब कोई बाहरी चीज नहीं रहता, वो उनके अंदर बस जाता है।
जब शासन किसी को अपना दुश्मन मान लेता है, तो उसका सामना करने के लिए वो क्या भेजता है? कोई वर्दी वाला सिपाही, या खतरा किसी और शक्ल में आता है?
खतरा एक बहुत ही साधारण दिखने वाले इंसान की शक्ल में आता है, कैप्टन प्लेजे।
कैप्टन प्लेजे?
वो सिक्योरिटेट का एक अधिकारी है। देखने में वो एक आम सरकारी बाबू जैसा लगता है, लेकिन उसकी क्रूरता शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक है। वो इन दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाता है।
और इन पूछताछ में क्या होता है? क्या वो उन्हें मारता पीटता है?
नहीं, वो उससे भी बदतर काम करता है। उसका मकसद उनसे कोई जुर्म कबूल करवाना है ही नहीं, उसका मकसद है उनकी आत्मा को तोड़ना, उनके आत्मविश्वास को कुचलना।
वो कैसे?
वो उनसे घंटों तक बेतुके सवाल पूछता है। वो उनकी दोस्ती को ही उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो एक दोस्त के सामने दूसरे की ऐसी बातें घुमा फिरा कर रखता है कि उन्हें एक दूसरे पर शक होने लगता है।
मतलब उसका असली निशाना उनकी दोस्ती है? वो उस छोटे से द्वीप को ही डुबो देना चाहता है जो उन्होंने बनाया था।
बिल्कुल, वो भरोसे को ही एक कमजोरी में बदल देता है।
ये तो बहुत ही भयानक है।
हाँ, और यही हमें किताब की सबसे गहरी और शायद सबसे डरावनी बात समझ में आती है। तानाशाही सिर्फ शरीर पर जुल्म नहीं करती, वो इंसानी रिश्तों की बुनियाद को ही हिला देती है। जो दोस्ती जीने का एकमात्र सहारा थी, अब वही सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। जब आप कैप्टन प्लेचे लेके पूछताछ वाले कमरे में होते हैं, तो आपको लगता है कि शायद आपका सबसे करीबी दोस्त ही आपके खिलाफ गवाही दे रहा है।
और मुझे लगता है कि यही हाल भाषा का भी होता होगा। जब सरकार के शब्द झूठे हों, तो लोग सच के लिए कहां जाएं?
आपने बहुत जरूरी बात छेड़ी। सरकारी भाषा तो नारों और झूठ का पुलिंदा है। न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा, ये सब खोखले शब्द हैं। इसीलिए ये दोस्त कविता और साहित्य में सच्चाई खोजते हैं। लेकिन वहां भी एक दुविधा है। एडगर का एक बहुत ही मशहूर कथन है जो इस पूरी स्थिति को बयान कर देता है।
वो क्या?
वो कहता है, जब हम चुप रहते हैं तो हम असहनीय हो जाते हैं,
और जब हम बोलते हैं तो हम खुद को मूर्ख बना लेते हैं। ये लाइन सुनने में बहुत दमदार है, पर यह बहुत उलझन भरी भी है। इसका असल मतलब क्या था?
इसका मतलब है कि आपके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप चुप रहते हैं तो आपकी चुप्पी को आपकी असहमति या विद्रोह मान लिया जाता है। आप शासन की नज़र में खटकने लगते हैं, और अगर आप बोलते हैं तो आप अपने ही शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, और आप सबके सामने एक मूर्ख या देशद्रोही साबित कर दिए जाते हैं।
ये एक ऐसी कैच-22 स्थिति है जहां हर रास्ता तबाही की ओर ही जाता है।
बिल्कुल,
ऐसे माहौल में वो दोस्ती कैसे बचेगी जो शब्दों और भरोसे पर ही टिकी थी? इस मनोवैज्ञानिक दबाव को झेलना तो लगभग नामुमकिन है।
वो नहीं बचती। शासन एक एक करके सबको खत्म करना शुरू करता है। सबसे पहले जॉर्ज, जो समूह में सबसे ज्यादा मुखर और साहसी था, उसे एक ऊंची खिड़की से धकेल दिया जाता है।
और सरकारी रिपोर्ट में जाहिर है, इसे आत्महत्या बता दिया जाता है।
हाँ बिल्कुल, ये शासन का काम करने का तरीका है। अपने दुश्मनों को खत्म करो और उसे उनकी अपनी नाकामी या कमजोरी का नतीजा बता दो।
और ये सिलसिला यही नहीं रुकता होगा?
नहीं, जॉर्ज के मौत के कुछ ही समय बाद कर्ट भी लोला की तरह ही अपनी अलमारी में लटकता हुआ पाया जाता है।
एक और आत्महत्या?
हाँ, शासन ने एक एक करके उस छोटे से द्वीप के हर बाशिंदे को खत्म कर दिया था। अब सिर्फ कथावाचक और एडगर अकेले रह गए थे।
यहाँ पर मुझे लगता है उपन्यास का शीर्षक द लैंड ऑफ ग्रीन प्लम्स, यानी हरे आलू बुखारों की भूमि, अपने पूरे प्रतीक के साथ सामने आता है। ये एक बहुत ही अजीब और काव्यात्मक शीर्षक है। इसका क्या मतलब है?
कथावाचक अपने बचपन को याद करती हैं, जब उसकी दादी उसे हरे कच्चे आलू बुखारे खाने से मना करती थीं।
क्यों?
क्योंकि वे कड़वे और खट्टे होते हैं और उन्हें खाने से पेट खराब हो जाता है। ये हरे आलू बुखारे उस पूरी पीढ़ी का प्रतीक हैं। वे बच्चे और नौजवान जिन्हें समय से पहले ही दुनिया की कठोर सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिनका यौवन, जिनकी मासूमियत उनसे छीन ली गई, जिन्हें पकने और मीठा होने का मौका ही नहीं मिला। उनकी जिंदगी का स्वाद हमेशा कड़वा और खट्टा ही रहा।
वाह, ये एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। तो अब कथावाचक अकेली है, मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी है, और वो किसी तरह जर्मनी भागने में कामयाब हो जाती है। पहली नज़र में तो लगता है कि चलो, कहानी का अंत सुखद हुआ, उसे आज़ादी मिल गई। लेकिन क्या सच में ऐसा है?
यही हर्टा म्यूलर की लेखनी की महानता दिखती है। वो आसान जवाब नहीं देती। कहानी का यह अंत सुखद बिल्कुल नहीं है। शारीरिक स्वतंत्रता का मतलब मानसिक मुक्ति नहीं होता।
अच्छा।
कथावाचक रोमानिया की सरहद पार कर जाती है, लेकिन वो डर, कैप्टन प्लेजेले की आवाज और अपने मरे हुए दोस्तों के भूत, वो सब उसके साथ जर्मनी चले जाते हैं।
मतलब आप देश छोड़ सकते हैं, लेकिन वो देश, वो अनुभव आपके अंदर से कभी नहीं निकलता।
बिल्कुल।
तो हरे आलू बुखारों की भूमि कोई भौगोलिक जगह नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है, एक ट्रॉमा है जिसे कभी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उपन्यास का अंत इसी गहरे और बेचैन कर देने वाले विचार पर होता है। कथावाचक अब एक आजाद देश में है, लेकिन वो आजाद नहीं है। उसका मन अभी भी उसी हॉस्टल के कमरे में, उसी पूछताछ के कमरे में कैद है, और शायद इसीलिए वो ये कहानी लिख रही है।
तो कहानी लिखना ही उसके प्रतिरोध का अंतिम रूप है।
हाँ, ये उन दोस्तों को आवाज देने का एक तरीका है जिन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था। ये उनकी याद को जिंदा रखने का एक अंतिम डेसेस्पेरेट प्रयास है। ये दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि उस घुटन में क्या हुआ था। कहानी लिखना उस दिल के जानवर से लड़ने का उसका अपना तरीका है।
तो अंत में यह उपन्यास हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक दमन केवल शारीरिक हिंसा नहीं है, बल्कि यह आत्मा में घोला जाने वाला एक धीमा जहर है जो सबसे पहले इंसानी रिश्तों के भरोसे और भाषा की सच्चाई को नष्ट करता है।
और ये उस नैतिक कर्तव्य को भी उजागर करता है कि उन लोगों के लिए गवाही दी जाए जिन्हें चुप करा दिया गया, भले ही उस कहानी को दोबारा जीना कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। याद रखना ही प्रतिरोध का एक रूप है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।